जय राधमा भव कुंज बिहारे जय राधमा भव।
यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद दशम अध्याय चौथे श्लोक पर आधारित है, जो कि श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अंतःप्रवेश्य गंगायां अम्बुजा वानराजिनी चिक्रीदातु युवातिभिः गाजा विवाकरेणुभिः तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अन्तःप्रवेश्य गङ्गायाम् अम्बुजवानराजने चक्रीधातुर्युवातिभिः गाजा विवा करेणुभिः। तो इस अध्याय में हम कुबेर के दो पुत्रों की कथा पढ़ रहे हैं, किस प्रकार नारद मुनि जी के द्वारा इन दोनों का उद्धार हुआ। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में परीक्षित महाराज ने शुक्रदेव गोस्वामी से पूछा कि क्या कारण है कि नारद मुनि जी, जो कि इतने ऊंचे कोटि के संत हैं, वो क्रोधित हो गए कुबेर के दो पुत्रों का व्यवहार देखकर, और क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें शाप दिया। क्या कारण? संत जो भी करते हैं दूसरों के उद्धार के लिए करते हैं। तो फिर शुक्रदेव गोस्वामी जी ने समझाया, उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो कुबेर के दो बेटे थे नलुकुवर और मणिग्रीवर, कुबेर जो हैं देवताओं के खजांची हैं, और देवताओं के खजांची होने के कारण धन की तो कोई कमी है नहीं। इस पृथ्वी पर भी जो धनी व्यक्ति होते हैं, आप देखते हो वो किस प्रकार धन को फूंकते हैं। सुना जाता है कि कई लोग रात को खाना खाने जाते हैं फाइव स्टार होटल में, तो 1,00,000 रुपये का बिल भर के आ जाते हैं। तो कुबेर के जो बेटे, कुबेर जो है क्योंकि देवताओं के खजांची हैं, वो धनी हैं, और एक कुबेर के दो बेटे नलुकुवर और मणिग्रीवा देवता शिव जी के भक्त थे, और उनके भक्त होने के कारण उन्हें ये सुविधा प्राप्त हुई थी कि कैलाश पर्वत तक जाए, जो कि मंदाकिनी गंगा के किनारे है। और जैसे हम समाज में भी देखते हैं कि धनी खानदान के की औलाद बिगड़ जाती है जल्दी, तो उसी प्रकार कुबेर के जो दो बेटे थे ये भी बिगड़ गए थे धन के प्रभाव के कारण। और देवताओं के जो भक्त होते हैं अक्सर उनमें भौतिक इच्छाएं रहती हैं, जैसे कि यहाँ कुबेर के जो दो बेटे थे शिव जी के भक्त थे, पर साथ में इंद्रिय तृप्ति के विचार भी हृदय में थे। इस विषय की चर्चा भगवद गीता में भगवान करते हैं और ये कहते हैं कि कम बुद्धि के व्यक्ति देवताओं की शरण लेते हैं, कहते हैं हित्य ज्ञान प्रपद न्या देवता, और देवताओं के पास जाते हैं किस कारण? अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और पर जो परम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो उन्हें भगवान भक्ति की सुविधा देते हैं, और जिनकी ये इच्छा रहती है कि केवल भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो तो फिर वो देवताओं के पास जाते हैं। तो कुबेर के जो दो बेटे थे नंदकुंवर और मणिग्रीवा, कैलाश पर्वत पे जाकर वहां उन्होंने एक खास नशे की चीज शराब जैसे पी, जिसको वरुणी के नाम से बुलाते हैं। जैसे यहाँ भौतिक संसार में आपको बियर है, रम है, विस्की है, अलग अलग चीज़ों के नाम है, तो वहाँ के शराबों के भी अलग अलग नाम हैं। उनमें से वहाँ की शराब का नाम है वरुणी, और वरुणी के नशे में थे या स्त्रियों के साथ, जवान लड़कियों के साथ खेल रहे थे। और नारद मुनि जी जब वहां से गुजरे तो इतने गहरी नशे में थे कि वो पहचान नहीं पाए कि यहाँ नारद मुनि जी हैं, और उन्होंने ना तो उनको आदर दिया ना ही अपने शरीर नंगे शरीर को ढका। पर जो युवतियों थी उन्होंने अपने आप को ढक लिया था अपने शरीर को। तो नारद मुनि जी ने देखा कि कितने अफसोस की बात है, कुबेर के बेटे होते हुए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, नंगे खड़े हैं और उन्हीं शराब के नशे में। तो उन्होंने सोचा कि उनके उद्धार के लिए उन्हें शाप दिया जाए। जैसे कि पेड़ जो हैं ये भी नंगे खड़े होते हैं, तो इसी क्योंकि ये दो पुत्र भी नंगे थे शराब के नशे में, नारद मुनि ने उन्हें शाप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, भेड़ बन जाओ, पर किसी साधारण स्थान में नहीं। ये नहीं कि दिल्ली की सड़कों में या न्यूयॉर्क की सड़कों में या लंदन की सड़कों में। उन्होंने ये शाप दिया कि तुम पेड़ बन जाओगे पर नंद महाराज के आंगन में, और पेड़ के रूप में खड़ा रहना पड़ेगा कितनी देर, देवताओं के 100 साल। देवताओं के सालों में और हमारे सालों में अंतर है। इस पृथ्वी का 6 महीना देवताओं के 12 घंटे के बराबर है, 1 दिन के बराबर। तो देवताओं के 100 सालों के लिए वृक्ष के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, पर कहां, नंद महाराज के आंगन में। और साथ में उन्हें ये भी कहा कि 100 साल के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कहते हैं सामान्यतः लोग अपने पापों को धोने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अक्सर हम गंगा में स्नान करने जाते हैं पापों को धोने के लिए, पर यहां हमने क्या देखा, यहां आप ये देख रहे हो कि नंदकुंवर और मणिग्रीवा गंगा में पापों को धोने के लिए नहीं पर पापों को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। वो गंगा में खेल रहे हैं युवतियों के साथ शराब के नशे में, तो कितनी अफसोस की बात है। तो इस तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक अथवा भौतिक कार्य तो मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर है, आप गंगा में स्नान कर सकते हो पर अगर आपका मन गलत कामों में है तो आप पापों को धोगे नहीं। ये निर्भर है मानसिक दशा के ऊपर, इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में अनेक श्लोकों में मन के द्वारा मेरा चिंतन करो। प्रभुपाद जी हमें एक कथा सुनाते थे कि एक समय एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण के घर के सामने एक वैश्या का घर था। ब्राह्मण अपने बरामदे में बैठे रहता था ग्रंथों को सामने रखकर, कि मन के द्वारा वो यही सोच रहा था वैश्या के कार्यों के विषय में, देखता था कौन ग्राहक उसके घर में जा रहा है, कौन आ रहा है, सोचता था क्या हो रहा है। वो जो वैश्य थी पाप के काम में लगी हुई थी पर मन के द्वारा यही सोचती थी कि कब मुझे एक ब्राह्मण खानदान में जन्म मिलेगा, कब मैं उस ब्राह्मण जैसे ग्रंथों का अध्ययन कर सकूंगी, कब मैं इस पाप के काम से छूटूंगी और भगवान के सेवा में जुड़ूंगी। तो थोड़ी देर बाद उस इलाके में आग लग गई जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। तो यामदूत आए ब्राह्मण के पास उन्हें नरक में जाने के लिए। मृत्यु के समय ब्राह्मण सोच रहा था वैश्य के भोग विलास के विषय में और वैश्य सोच रही थी किस प्रकार वो ब्राह्मण शास्त्रों को पढ़ता है, भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है। तो जब यामदूत आए ब्राह्मण के पास उसे नरक में ले जाने के लिए तो यामदूत उस ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई आप तो गलत पते पर आ गए हो, आपको तो सामने जाना चाहिए जहां वो वैश्य सब गंदा काम कर रही थी, मैं तो दिन रात शास्त्र पढ़ता था। तो फिर यामदूत ने कहा, आप दिखावा करते थे शास्त्र पढ़ने का पर मन द्वारा उस वैश्य के भोग विलास का चिंतन कर रहे थे और वो वैश्य जुड़ी हुई थी गलत कामों में पर मन के द्वारा क्या कर रही थी, यही सोच रही थी कि कब उसे उस स्थिति में जन्म मिलेगा जब वो इस ब्राह्मण के समान शास्त्रों का अध्ययन कर सके, सेवा में जुड़ सके। तो मानसिक दशा किस प्रकार की है यह बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में हम कथा पढ़ते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि, उनके हृदय में ईर्ष्या थी, द्वेष था अम्बरीश महाराज के प्रति। योगिक सिद्धियां थी पर जब तक आप शुद्ध भक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं करो आप सब दोषों से नहीं बच सकते। तो दुर्वासा मुनि ने जब देखा कि अम्बरीश महाराज ने उनके राह देखे बिना जल पी लिया है अपने व्रत को तोड़ने के लिए, क्योंकि व्रत तोड़ने का समय आ रहा था, दुर्वासा मुनि नहीं लौटे थे, तो ब्राह्मणों ने अम्बरीश महाराज से कहा कि जल पी लो, जल पीने से एक प्रकार से व्रत टूटता है और नहीं भी टूटता। तो दुर्वासा मुनि ने वहां पहुंचते ही अम्बरीश महाराज को समाप्त करने का प्रयास किया है कि नहीं, अपने सीके से उन्होंने क्या निकाला, सीके से एक राक्षस निकाला, इस भाव से कि वो अम्बरीश महाराज को जला देगा, समाप्त कर देगा। पर अम्बरीश महाराज मन के द्वारा भगवान का चिंतन कर रहे थे, सर्वे मना कृष्ण पधार बिंदयो। अम्बरीश महाराज ने कहा कि इस मन के द्वारा निरंतर सदा प्रयास करना चाहिए भगवान का चिंतन करने के लिए। तो जब आप भगवान का चिंतन करते हो तो यह है भगवान की शरण लेने का। तो दुर्वासा मुनि ने राक्षस पैदा किया अम्बरीश महाराज को समाप्त करने के लिए, पर अम्बरीश महाराज घबराए नहीं, मन के द्वारा भगवान का चिंतन कर रहे थे और जिसका ये परिणाम हुआ कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और इस सुदर्शन चक्र ने फिर दुर्वासा मुनि का पीछा किया। दुर्वासा मुनि भागे इस सुदर्शन चक्र की गर्मी से बचने के लिए और जहां वो भागे उनके पीछे ये सुदर्शन चक्र की गर्मी थी, उनका शरीर जल रहा था, पीठ जल रही थी। अंत में वो पहुंचे कहां, भगवान के पास। भगवान ने क्या कहा उनसे, मेरे जो भक्त हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं जो हूं आपके भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। और फिर दुर्वासा मुनि ने जाकर अम्बरीश महाराज से माफी मांगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं आध्यात्मिक अथवा भौतिक कार्य तो मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम इस युद्ध में लड़ो, तस्मात सर्वेशु कलेशु, तुम्हें सिर में लड़ो, पर मन जो है मुझे अर्पण करो। तस्मात सर्वेशु कलेशु मम मनस्मान युद्धचा, युद्ध में लड़ो पर मन मुझे अर्पण करो, मन के द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, ये अवश्य है। जैसे कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मन मन भाव मत भक्तो मध्या जीवन नमस्कुरु माँ मैं वाशी सत्यम ते प्रति जने पियोषी में, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में हमें कथा पढ़ते हैं जद भारत की। जद भारत पूर्व जन्म में भारत महाराज थे, जबकि उन्होंने पूरे संसार को त्यागा, जंगल में गए जहाँ की वो एक हिरण के प्रति आकर्षित हो गए, हिरण के बच्चे के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि एक पल भी उससे दूर नहीं रहते थे, और उनको खोजते खोजते उनकी उनका जीवन समाप्त हो। थोड़ी देर के लिए उन्होंने पशु के रूप में जन्म लिया, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, यम यम वापी स्मरण भवान, जहां आपका मन होगा मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ये है प्रकृति का नियम, इसे कोई बच नहीं सकता। अगर जैसे महाराज भारत के विषय में मृत्यु के समय कहां था उनका मन, हिरण के प्रति, तो उन्हें हिरण के रूप में जीवन ग्रहण करना, जन्म ग्रहण करना पड़ा। पर साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि जो भक्ति करता है वो बेकार में नहीं जाती, तो उन्हें ज्यादा समय नहीं रहना पड़ा इस पशु के रूप में, और जल्दी उन्होंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जहाँ की उनका नाम था जद भारत। और जब उन्होंने जद भारत के रूप में जन्म लिया तो समझ गए थे कि जो गलती की थी उन्होंने पिछले जन्म में, और उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि हम मैंने समाज में गूंगे और बहरे व्यक्ति के समान व्यवहार करना है, ना तो गूंगे थे ना बहरे थे, पर क्योंकि वो फंसना नहीं चाहते थे किसी गलत काम में। पर जब महाराज योगना को उपदेश देने का समय आया तो शेर के जैसे उन्होंने उपदेश दिया। तो यही जद भारत एक समय खेती की देखभाल कर रहे थे, उनकी सौतेली माँ थी, और क्योंकि वो समाज में ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वो बहरे हैं गूंगे हैं, लोग उन्हें पागल मानते थे। तो उनके पिता के देहांत के पश्चात उनके सौतेले भाइयों ने उन्हें कहा खेती की देखभाल करो, उन्हें निकम्मा सोचकर छोटा सा काम दे दिया करने का। तो एक समय जद भारत को डाकू ने आकर चुरा लिया, किडनैप कर लिया, और ये डाकू जद भारत को दुर्गा देवी काली को भेंट के रूप में अर्पण करने जा रहे थे। तो पहले उन्हें सजाया, फिर तेल मालिश, तेल से मालिश की, फिर नहलाया, और जब दुर्गा देवी जी को अर्पण करने जा रहे थे, पर जद भारत जो है अपने मन के द्वारा निरंतर भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने चाकू को उठाया उन्हें काटने के लिए, दुर्गा देवी जी मूर्ति के अंदर से निकली और जद भारत की रक्षा की, और उसी चाकू के साथ डाकों को काट दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक दशा हमारी यह होनी चाहिए कि चाहे हम कुछ भी कार्य करें, हम प्रयास करें, भगवान का चिंतन करने का, भगवान का स्मरण करने का। यहाँ हम देखते हैं कि कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीवा गंगा नदी में है, मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे हैं, पर पापों को धोने के लिए नहीं, इस विचार से कि हम और इंद्रिय तृप्ति करें, तो अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए किसी न किसी माध्यम के द्वारा मन को बंधु बनाने के लिए। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में, जिसे हम ध्यान योग के नाम से जानते हैं, अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान क्या निवेदन कर रहे हैं, मन को बंधु बनाओ, बंधु बनाओ, शत्रु नहीं। तो किस अवस्था में मन बंधु माना जाता है और किस अवस्था में मन शत्रु माना जाता है? मन शत्रु जब माना जाता है जब मन में विचार हो शास्त्र के विपरीत, और मन बंधु जब माना जाता है जब मन के विचार हो शास्त्रों के आधार पर। और अगर हम मन द्वारा यही सोच रहे हैं किस प्रकार भगवान के आदेश का पालन किया जाए, किस प्रकार गुरु साधु के आदेश का पालन किया जाए, तो फिर ये बंधु जो मन है बंधु के समान है। भक्ति रसमृत सिंधु में रूपा गोस्वामी जी हमें एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, बहुत गरीब, पर गरीब होते हुए भी वो संतुष्ट था। अक्सर गरीब व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता, गरीब व्यक्ति यही चाहता है कि किसी ना किसी प्रकार से मैं भी धनी बन जाऊं। हाँ, पर जो ब्राह्मण है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। अगर ब्राह्मण को कष्ट भी भुगतना पड़ा तो किसी को दोष नहीं देता, यही नहीं कहता तुम्हारे कारण मुझे कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वो यही सोचता है ये मेरे कर्मों का परिणाम है और भगवान की असीम कृपा से मुझे तो बहुत थोड़ा परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार ये ब्राह्मण जो था बिल्कुल संतुष्ट था गरीब होते हुए भी। ठाकुर भक्ति राव जी एक महान संत जिन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है अपने ग्रंथों के द्वारा, कविताओं के द्वारा। वो कहते हैं मनस देह गेह योग की छिमोड़ा अटलम त्रिय पदे नंद किशोरा। भौतिक दृष्टि से ठाकुर भक्ति राव जी गृहस्थ आश्रम में थे, तो कहते हैं कि मैं अपने मन बुद्धि शरीर पत्नी बच्चे संपत्ति सबको आपके चरणों में अर्पण करता हूं। तो किसी न किसी रूप से हमें प्रयास करना चाहिए मन को जीतने के लिए। अर्जुन ने भगवान से कहा मन को वश में लाना, वायु को वश में लाने से ज्यादा कठिन है। कहा ना मन तो बड़ा ढीठ है, सुनने पर भी प्रयास सुनता नहीं। हजारों बार सुना है आपने क्या ठीक है क्या गलत है, जब भी हम गलत करते हैं बहुत ही चंचल है। तो फिर क्या किया जाए? भगवान कहते हैं कि भक्ति योग की विधियों का पालन करने के द्वारा अब मन को भी जीत पाओगे। जैसे कि भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं
कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो भक्तियों की विधियों का पालन करो, और भक्तियों की विधियों का पालन करने के द्वारा मुझे प्राप्त करने की भावना बढ़ेगी। तो जब हम श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाएं तो इसके द्वारा विष्णु स्मरणम भी संभव हो सकता है। और अगर हम सावधानी से श्रवणम कीर्तनम का पालन नहीं करेंगे तो विष्णु स्मरणम जो है असंभव रहेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए मन को जीतने के लिए। तो आप बेशक तीर्थ के स्थान में जाओ पर अगर आप मन के द्वारा यही सोच रहे हो इंद्रिय तृप्ति वगैरह का, तो तीर्थ के स्थान में जाने का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा है आपको कि आप हिमालय की चोटी पर चढ़ो। जो कार्य संभव है वही उपदेश हमें दिया जा रहा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए इस कलयुग में ये संभव नहीं है, अगर हम लाभ उठाएंगे तो वैसे ही इस विषय में भी उन्नति कर पाएंगे। तो कुबेर के जो दो बेटे थे नल कुंवर और मणि ग्रीव, उन्हें तो भगवान ने नारद मुनि जी ने श्राप दिया था कि देवताओं के 100 सालों तक तुम्हें वृक्ष के रूप में खड़ा होना पड़ेगा नंद महाराज के आंगन में, और 100 सालों की समाप्ति पर तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो जब 100 साल बीत गए, भगवान को पता था कि उनके प्रिय भक्त नारद मुनि जी ने किस प्रकार का श्राप दिया और क्या वचन दिया था। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के शब्दों का पालन करते हैं। जैसे कि जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को अनेक वर दिए, हिरण्यकशिपु की क्या इच्छा थी कि किसी प्रकार मृत्यु के सामने उन्हें झुकना नहीं पड़े, तो उन्होंने चापलूसी करके अनेक प्रकार के वर प्राप्त कर लिए ब्रह्मा जी से। ना मेरी मृत्यु होगी दिन के समय, ना रात के समय, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना सागर में, ना मनुष्य के द्वारा, ना पशु के द्वारा। तो जब हिरण्यकशिपु के मृत्यु का समय आया, ब्रह्मा जी के सब वरों का पालन करते हुए भगवान ने नरसिंहदेव जी का रूप ग्रहण किया, जिसके द्वारा हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो। तो उसी प्रकार यहां हम देखते हैं कि भगवान ने 100 सालों की समाप्ति पर ये देखा ये कि आप जो वर दिया है नारद मुनि जी उसका पालन करना चाहे, तो भगवान ने इन दो पेड़ों को जो वो आंगन में खेल रहे थे नीचे गिरा दिया। जब ये दो पेड़ नीचे गिरे तो ये सदो माथा, जब पेड़ नीचे गिरे तो बहुत जोर से आवाज आई। जब आवाज आई तो यशोदा माता नंद महाराज साहब भागे भागे बाहर आए, देखो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने देखा कि दो पेड़ नीचे गिरे हुए हैं और उन्होंने कहा भगवान विष्णु की दया के पेड़ हमारे बेटे के ऊपर नहीं गिरे, क्योंकि पेड़ जब नीचे गिरे आधे इंच से भगवान के शरीर के बाजू से गिरे। तो उन्होंने कहा देखो क्या सौभाग्य है भगवान की कृपा कि हमारे बेटे के शरीर पर पेड़ नहीं गिरे। तो फिर उन्होंने पूछा ये पेड़ गिरे कैसे, तो जो भगवान के मित्र थे उन्होंने कहा अरे भाई ये पेड़ तो आपके बेटे ने गिराए हैं। तो यशोदा माता कहने लगी नहीं नहीं ये संभव नहीं हो सकता, मेरा छोटा बेटा ये दो बड़े पेड़ों को कैसे गिरा सकता है, ये तो आंधी के कारण वायु के कारण गिरे होंगे। और फिर कुबेर के दो बेटों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया जो कि आप आगे के श्लोकों में पढ़ोगे। तो संक्षेप में परीक्षित महाराज ने पूछा शुकदेव गोस्वामी से क्या कारण था कि नारद मुनि जी ने इन दो पुत्रों को, कुबेर के पुत्रों को क्रोधित होकर क्यों श्राप दिया। और फिर शुकदेव गोस्वामी जी अभी उत्तर दे रहे हैं और आज के श्लोक में आपने देखा कि किस प्रकार कुबेर के दो पुत्र नलकुंवर और मणिग्रीव युवतियों के साथ गंगा नदी में खेल रहे थे, और किस प्रकार नारद मुनि जी ने जब उनकी ये स्थिति देखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। जब भगवान के भक्त देखते हैं भौतिकवादी व्यक्तियों को या किसी को गलत कार्य करते हुए तो उन्हें दुख पहुंचता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज के विषय में हम पढ़ते हैं उनके उपदेश में, जब प्रहलाद महाराज जी ने देखा कि किस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति सदा प्रयास करते हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये देखकर मुझे अत्यंत दुख पहुंच रहा है। तो इसलिए भगवान के प्रतिनिधि वैष्णव भक्त सदा यही सोचते हैं कि किस प्रकार समाज का सुधार होगा, किस प्रकार समाज का उद्धार होगा, और वो कार्य करते हैं उनके उद्धार के लिए और सुधार के लिए। प्रभुपाद जी ने भक्तों को आदेश दिया प्रचार करने को, चैतन्य महाप्रभु जी ने हर प्रतिनिधि को आदेश दिया प्रचार करने को, जारे दाखोता है कहो कृष्ण उपदेश क्यों, क्योंकि भगवान उनके भक्तों की यही भावना रहती है कि पूरा समाज सुखी बने, पर बिना किसी शंका के वो ये जानते हैं कि असली सुख प्राप्त हो सकता है केवल भगवान की भक्ति के द्वारा, और भौतिक कार्यों के द्वारा असली सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए समाज में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की शिक्षा है वो उपदेश क्या है, शास्त्रों का उपदेश। इसलिए हमें हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए इस संदेश को आगे पहुंचाने के लिए, और हमें स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए कि हम दृढ़ होकर यह स्वीकार करें कि इस भक्ति योग माध्यम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर हम सावधानी से श्रवणम कीर्तनम करेंगे तो हमारी मानसिक दिशा जो है वो भी शुद्ध बनेगी और आप भगवान का स्मरण कर पाओगे। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, अगर हम स्वयं प्रयास करेंगे भक्तियों के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो भगवान जो विराजमान है हृदय में परमात्मा के रूप में, वो हमारा पूरा सहयोग देंगे इस विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण।